नमस्कार भारत, आज है 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। यूरोपीय संघ ने स्पेन बनाम कैटलोनिया के मामले में दखल से किया इनकार।
I am, of course, in, for many reasons, in a permanent contact with Prime Minister Mariano Rajoy.
दिवाली के बाद कितनी बदली दिल्ली और NCR की फिजा, क्या सुप्रीम कोर्ट के बैन का कोई फायदा हुआ? और सुनवाएंगे खास रिपोर्ट उर्दू में होने वाले रामायण के पाठ पर।
थोड़े दिन में जन के भी साधु सामा हो गए, खून से रंगीन सब को हो पियावा हो गए, ये भी कुछ जख्मी हुए कुछ वो भी बेजा हो गए, कत्ले रावण के सब आसार अब नुमाया हो गए।
होगी बात पाकिस्तान में हो रही सियासी उठापटक की भी, लेकिन विश्व समाचार के बाद।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ स्पेन और कैटलोनिया के बीच मध्यस्थता नहीं करेगा। ब्राजील्स में यूरोपीय संघ के सम्मेलन में डोनाल्ड टुस्क ने कहा है कि कैटलोनिया की आज़ादी की मांग से पैदा हुए संकट पर व्यापक चर्चा भी नहीं की जाएगी। वहीं स्पेन ने कहा है कि वह जल्द ही कैटलोनिया की स्वायत्तता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। कैटलोनिया के नेताओं ने कहा है कि यदि स्पेन ने अपनी दमनकारी नीतियां खत्म नहीं की तो कैटलोनिया की संसद आज़ादी का औपचारिक ऐलान कर देगी। 1 अक्टूबर को कैटलोनिया की आज़ादी के मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह के बाद से स्वायत्त प्रांत कैटलोनिया और स्पेन की केंद्रीय सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने यूरोपीय संघ के नेताओं से ब्रेग्जिट के मुद्दे पर वार्ता का नया माहौल बनाने की अपील की है। ब्राजील्स में बोलते हुए टेरेसा मे ने कहा कि ब्रेग्जिट का समझौता ऐसा होना चाहिए जिसका वो अपने देश में भी बचाव कर सकें। टेरेसा मे ने स्वीकार किया कि यूरोपीय संघ से अलग होने की वार्ता में कुछ मुश्किलें थीं, लेकिन अब ये वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उन्हें कोई शक नहीं है कि नतीजे बेहतर निकलेंगे, लेकिन वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अभी और काम किए जाने की जरूरत है। एंगेला मर्केल ने कहा,
Wir haben Fortschritte und es ist vielleicht auch in der Natur der Sache, dass man
हमने प्रगति की है और आप जानते हैं कि ऐसी चीजों में आप एक एक कदम करके रखते हैं। मुझे इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि यदि हम सब लोग ध्यान केंद्रित करें तो हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। जो चर्चा हुई है मैंने उस पर गौर किया है, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूं। जहां तक मेरी राय है ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध से पता चला है कि साल 2015 में 90 लाख असमय मौतें प्रदूषण की वजह से हुई हैं। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट ने दुनिया भर में प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के डेटा का अध्ययन किया है। इनमें दिल की बीमारियां और दिल के दौरे भी शामिल थे। ये मौतें साल 2015 में हुई कुल मौतों का 16% हैं। असमय मौतों की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण है और उसके बाद जल प्रदूषण का नंबर आता है। सबसे ज्यादा मौतें कम आय वाले देशों में हुई हैं। स्वायत्त कुर्दिस्तान की प्रांतीय सरकार ने इराक के प्रधानमंत्री हैदर अलाबादी की ओर से वार्ता के न्योते को स्वीकार कर लिया है। उत्तरी इराक के किरकुक का नियंत्रण कुछ दिन पहले ही इराकी सैन्य बलों ने कुर्द बलों से ले लिया था। कुर्दों और इराकी बलों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल और किरकुक के बीच मुख्य मार्ग पर सशस्त्र कुर्द लड़ाकों ने इराक के केंद्रीय बलों की चौकियों से कुछ दूर पर ही अपनी चौकियां स्थापित कर ली हैं। कुर्द लड़ाकों ने साल 2014 में के बाद से इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले जितने भी इलाकों पर नियंत्रण किया था वो सब इलाके अब उन्होंने गंवा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इराकी सैन्य बलों के कुछ इलाकों से कुर्द लोगों को बाहर निकालने की रिपोर्टों पर चिंता भी व्यक्त की है। इलाके में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस समय इराक की केंद्रीय सरकार कुर्दों से बात करने के लिए मजबूत स्थिति में है। सेक्स स्कैंडल में फंसे फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन के करीबी रहे हॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक क्वेंटिन टारंटिनो ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कई दशकों से वाइनस्टीन के महिलाओं के प्रति रवैये के बारे में जानकारी थी। टारंटिनो ने कहा है कि वह महिलाओं के प्रति हुए व्यवहार पर मजबूत पक्ष नहीं रख पाए, जिसका उन्हें अफसोस है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम दीपावली के बाद पटाखों से कितना प्रदूषण बढ़ा है इस पर चर्चा करेंगे, प्रवासी भारतीयों को मतदान के अधिकार पर रिपोर्ट सुनवाएंगे और बात होगी अयोध्या में हुए दीपावली कार्यक्रम के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की संभावित राजनीतिक मंशा पर भी। लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूरोपीय संघ ने यह साफ कर दिया है कि वह स्पेन और कैटालोनिया के मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं स्पेन सरकार कह चुकी है कि वह कैटालोनिया से स्वायत्तता वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कैटलन नेता यह चाहते हैं कि स्पेन से अलग होकर कैटालोनिया एक नए देश के तौर पर अस्तित्व में आए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवास पाशा से।
स्पेन का कहना है कि वो संविधान के अनुच्छेद 155 को लागू कर कैटालोनिया प्रांत की स्वायत्तता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। कैटालोनिया की प्रांतीय सरकार के प्रमुख ने स्वतंत्रता के लिए हुए जनमत संग्रह के बाद स्पेन सरकार के अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया था। स्पेन की सरकार के प्रवक्ता इनिगो मेंडेस डे विगो ने राजधानी मैड्रिड में एक प्रेस वार्ता में बताया कि मंत्री शनिवार को कैटालोनिया की स्वायत्तता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मेंडेस डे विगो ने कहा,
el presidente del gobierno ha convocado para el próximo sábado en sesión extraordinaria al consejo de ministros।
प्रधानमंत्री ने शनिवार को मंत्रिपरिषद की एक विशेष बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में स्पेन के नागरिकों, जिनमें कैटालोनिया के नागरिक भी शामिल हैं, के हितों की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिन्हें अनुमोदन के लिए सीनेट के पास भेज दिया जाएगा। इनका उद्देश्य स्वायत्त कैटालोनिया क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करना होगा। इसी बीच यूरोपीय संघ ने स्पेन और कैटालोनिया के बीच चल रहे विवाद में कोई भी भूमिका निभाने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेन और कैटालोनिया के बीच विवाद में यूरोपीय संघ की कोई भूमिका नहीं होगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जों क्लॉद यूंकर के साथ साझा प्रेस वार्ता में बोलते हुए डोनाल्ड टुस्क ने कहा,
आई एम ऑफ कोर्स फॉर मेनी रीजंस इन परमानेंट कांटेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर मारियानो राहोय।
जाहिर तौर पर कई कारणों से स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राहोय के संपर्क में हूं। ये कोई छुपी बात नहीं है कि स्पेन के हालात चिंताजनक हैं, लेकिन मैं संस्थान और सदस्य देशों की बात कर रहा हूं, स्थिति स्पष्ट है। स्पेन में मध्यस्थता या किसी भूमिका की कोई जगह नहीं है। कैटालोनिया के नेताओं ने यूरोपीय संघ से मध्यस्थता की अपील की थी, लेकिन ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल नेता स्पेन की ओर झुके नजर आए। यूरोपीय संसद के नेता एंटोनियो ताजानी ने कैटालोनिया की मध्यस्थता की अपील को यह कहकर नकार दिया कि वो एक क्षेत्रीय नेता को किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष नहीं खड़ा करना चाहते। ताजानी ने कहा,
La Catalogna non è uno stato. La Catalogna è una regione autonoma che fa parte del regno di Spagna.
कैटालोनिया एक राष्ट्र नहीं है। कैटालोनिया एक स्वायत्त क्षेत्र है जो किंगडम ऑफ स्पेन का हिस्सा है। इसलिए मैं स्पेन की सरकार को कैटालोनिया की सरकार के बराबर नहीं रखना चाहता। मैं बातचीत का समर्थक हूं, लेकिन स्पेन की सरकार कैटालोनिया समेत पूरे स्पेन की सरकार है, जबकि कैटालोनिया की सरकार सिर्फ स्वायत्त इलाके की सरकार है। इसी बीच जर्मनी की नेता एंगेला मेर्कल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पेन की सरकार के प्रति समर्थन जाहिर किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि स्पेन के कैटालोनिया संकट ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुछ अलगाववादी अभियानों का तो समर्थन करते हैं, जबकि अन्य का समर्थन नहीं करते हैं। इसी बीच कैटालोनिया के नेताओं ने कहा है कि अगर स्पेन अपनी दमन की नीति पर कायम रहता है तो प्रांतीय संसद आजादी का औपचारिक ऐलान कर देगी। कैटालोनिया में 1 अक्टूबर को आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ था। इससे पहले और बाद में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। माना जा रहा है कि स्पेन की सरकार के ताजा ऐलान के बाद हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब बात भारत की। कल दीपावली का त्योहार मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर तो प्रतिबंध लगाया, लेकिन उन्हें जलाने पर प्रतिबंध नहीं था। तो पटाखे जले और जाहिरन इसका असर दिल्ली की आबो हवा पर दिखा है। ये असर कितना है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं एक्शन एंड इंटरनेशनल एनजीओ के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम कर रहे हरजीत सिंह के पास, जो प्रदूषण के आंकड़ों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरजीत, देर रात से ही मैं देख रहा था कि एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता बताने वाली जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे कि दिल्ली में फला फला जगह पर PM 2.5 कणों की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी?
जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का डेटा जो कि रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, इनका जो 11 बजे का डेटा अगर मैं आरके पुरम की बात करूं तो 2.5878 था माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में इसको नापा जाता है और PM 10 1180 के आसपास था। और अगर हम इसी डेटा को सुबह 6 बजे देखते हैं अभी तो थोड़ी सी गिरावट आई है, PM 2.5 776 है और जो PM 10 है वो 1083 के आसपास है। और जहांगीरपुरी में अभी सुबह 6 बजे का डेटा है जो PM 2.5 है वो 426 है और 10520 है। आनंद विहार जो हम जानते हैं कि काफ़ी पोल्यूटेड रहता है वहाँ पर 2.5 617 पहुँचा हुआ है और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के पास ये 911 है PM 2.5 और PM 10 985 है। मैं आपके सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जो सेफ लिमिट स्टैंडर्ड होता है PM 2.5 का वो 60 होता है और PM 10 का 100 होता है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हम देख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
जी हरजीत, एक बात और बताएं, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था तो ये तो अभी हमें नहीं पता है कि इससे पटाखों के इस्तेमाल में कुछ कमी आई या नहीं, लेकिन पिछली दिवाली से अगर तुलना करें तो क्या प्रदूषण कुछ कम हुआ है या वैसा ही है?
देखिए डेटा अभी आ रहे हैं, मैं 6-7 घंटे पहले की जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डेटा आया है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापते हैं और उनका कहना यह है कि कल ये इंडेक्स के हिसाब से जो आंकड़ा था वो 319 था और पिछली दिवाली में यही इंडेक्स जो था वो 431 था, जबकि दोनों ही खतरनाक हैं। जो 301 से 400 तक होता है वो वेरी पुअर कहा जाता है और जो 401 से ऊपर होता है वो काफ़ी खतरनाक कहा जाता है। तो दोनों ही हालतें अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछली दिवाली के हिसाब से अगर हम इंडेक्स की वैल्यू को देखते हैं तो वो कम था। और दिल्ली के नागरिकों का ये कहना है कि करीब 6 बजे तक आवाज़ भी बहुत कम थी और धुआं भी कम था। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी जो डेटा आया है वो है कि 11 बजे के बाद जो है वो आवाज़ और धुआं और पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह। और एक खबर जो अभी आपने दिलनवाज पाशा से भी सुनी कि एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में सामने आया है कि साल 2015 में 90 लाख असमय मौतें प्रदूषण की वजह से ही हुई हैं। यही खबर आज भी आई है और PM 2.5 के खतरनाक स्तर की जानकारी हरजीत सिंह आपको दे रहे थे। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां कल एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर पर आरोप तय कर दिए। क्या है पूरा मामला, इससे पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा, ये पूछा हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने इस्लामाबाद में BBC उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी से।
आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑर्डर पर इनके खिलाफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने रजिस्टर किए थे, जिसमें इनके ऊपर आरोप भी है कि इन्होंने लंदन में ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी जिनका पाकिस्तान में कोई हिसाब नहीं है कि उन प्रॉपर्टीज के लिए पैसा कहाँ से आया, वो पैसा करप्शन का पैसा तो नहीं था, क्या उसमें इन्होंने कोई टैक्स पे किया या नहीं किया। तो ये सारे जो सवालात हैं ये वो मुद्दे हैं जिनका शरीफ फैमिली को जवाब देना होगा। अभी तक शरीफ फैमिली ने इन सब आरोपों से इनकार किया है।
शरीफ परिवार के लिए आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, क्योंकि नवाज शरीफ खुद देश से बाहर हैं?
देखिए आने वाला वक्त काफी डिफिकल्ट होगा शरीफ फैमिली के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डिस्क्वालीफाई किया था और ये रेफरेंसेस करप्शन के इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजे थे तो उसको ये उन्होंने कोर्ट को कहा था कि वो 6 महीने के अंदर इन रेफरेंसेस पे कोई अपनी जजमेंट दे। इसका मतलब ये है कि विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ शरीफ फैमिली के खिलाफ या उसके हक में कोई फैसला आने वाला है। लग ये रहा है, जो लॉयर्स भी यही कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने आप को नॉट गिल्टी या इनोसेंट साबित करना।
इमरान खान बहुत बड़े नेता हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनकी पार्टी पीटीआई, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, इन लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले के बाद? क्या इनको कुछ फायदा मिल सकता है?
इमरान खान को तो इससे बहुत फायदा होने वाला है राजनीति में भी और अदरवाइज भी, क्योंकि ये उन्हीं का इनिशिएट करदा केस था जिसकी बेसिस पे नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो यहाँ तक तो वो एक तरह से सच साबित हुए हैं कि जो भी इमरान खान ने नवाज शरीफ से चार्जेस लगाए वो अदालत में साबित हो गए। दूसरा ये है कि अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई रहते हैं तो पंजाब जो है वो असल बैटल ग्राउंड है, जहां पर लोग जो हैं उन्होंने या नवाज शरीफ को वोट दिए थे या इमरान खान की पार्टी को वोट दिए थे। अब अगर नवाज शरीफ मंजर से हट जाते हैं या उनकी स्ट्रेंथ कम होती है तो वेरी ऑब्वियसली वो वाले वोट जो है वो पीटीआई को उसका फायदा होगा। तो इसलिए नवाज शरीफ के लिए जैसे जैसे डिफिकल्ट टाइम आता जा रहा है, इमरान खान के लिए सूरत हाल जो है वो सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो वो अभी तक अपने कदम दोबारा से जमा नहीं पाई है राजनीति में, क्योंकि उनके उनके जो लास्ट इलेक्शन थे उसमें भी उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, तो लोगों ने अभी तक उनको जो है उस तरह से वोट नहीं दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को अभी तक बेनजीर भुट्टो की जगह तक नहीं ला सके हैं। नवाज शरीफ को वापस तो आना होगा, लेकिन वो कब आएंगे, आया के इस ट्रायल कोर्ट में वो पेश होते हैं या नहीं होते ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी मरियम नवाज ने बताया है जर्नलिस्ट को कि नेक्स्ट वीक या 10 दिन बाद उनके फादर नवाज शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आएंगे।
ये थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
हाल के वर्षों में विदेश में रह रहे भारतीय लगातार मतदान के हक की मांग करते रहे हैं। इस साल अगस्त में भारत सरकार ने एक व्यवस्था को मंजूरी दी जिसे प्रॉक्सी वोटिंग कहा गया। इसे संसद से सहमति मिलने के बाद प्रवासी भारतीयों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब ये है कि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपनी तरफ से वोट डालने का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन इसे लागू करना क्या वाकई आसान होगा? लंदन से राहुल जोगलेकर की रिपोर्ट।
बास्केटबॉल कोर्ट बना, डांस फ्लोर, ये दिल्ली या मुंबई नहीं है, ये है लंदन से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाटफर्ड का शहर। प्रवासी भारतीय परदेश में होकर भी देश के साथ नाता बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग त्योहार बनाते हैं तो कुछ लोग अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं।
अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं यहाँ पे रहकर इंडिया में वोट कर सकूँ और पॉलिटिकल डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकूँ, दैट बी इन माय ओन बेनिफिट, बिकॉज मेरे कुछ अभी कनेक्शंस और मेरे इन्वेस्टमेंट्स और मेरा आई हैव अ स्टेक इन इंडिया एट द मोमेंट।
पंडित नेहरू कहते थे कि जहाँ पर भी भारतीय नागरिक जाता है वो अपने साथ थोड़ी सी भारतीयता लेकर जाता है, लेकिन NRIs जो भारत के बाहर रहते हैं उन्हें मतदान करने का हक नहीं दिया जाता। मोदी सरकार इसे बदलना चाहती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये इतना आसान नहीं है।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मुकुलिका बैनर्जी उनमें से एक हैं।
NRIs will get to vote for a government.
NRIs अपना वोट देंगे और चुनी हुई सरकार कोई भी नीति लागू कर सकती है, लेकिन NRIs इन नीतियों के परिणामों से आजाद कनाडा, अमरीका और ब्रिटेन में रह सकते हैं। क्या ये सही है?
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में NRI कनेक्ट प्रोग्राम का लंदन में आयोजन किया था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है।
मैं आपको पंजाब आने का आमंत्रण देता हूं, लेकिन ये कोई राजनीति नहीं है। आप किसी भी पार्टी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप पंजाब की असलियत से रूबरू हों।
2014 के चुनाव में NRIs ने BJP का जोर शोर से समर्थन किया। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में NRIs ने मोदी का जिस तरह स्वागत किया किसी रॉक स्टार से कम नहीं था।
भारत के प्रधानमंत्री आए, 60,000 लोग थे उनका स्वागतम करने के लिए, और यहाँ के जो एक्स प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, उन्होंने उनका स्वागत किया। इससे बड़ा और गर्व की क्या बात है भारतीय के लिए।
अब देखना यह है कि NRIs भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा वोट बैंक साबित होते हैं। राहुल जोगलेकर, BBC लंदन।
श्रोताओं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार छोटी दिवाली पर अयोध्या में भव्य तरीके से दिवाली कार्यक्रम मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर कई योजनाओं की घोषणा की। इस कार्यक्रम की राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा है। हमारे सहयोगी संदीप राय ने वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता से संपर्क साधा और उनसे समझना चाहा कि इस कार्यक्रम के जरिए योगी आदित्यनाथ क्या कोई राजनीतिक संदेश भी देना चाहते थे।
6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बने हुए और अभी तक डेवलपमेंट के फ्रंट पे उनका कोई अचीवमेंट नहीं, जिस वजह से लगातार मुख्यमंत्री और उनके दूसरे मंत्री जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह हिंदुत्व के एजेंडे को उभार रहे हैं। सभी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं, 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। दशहरे पे योगी आदित्यनाथ 10 दिनों तक लगातार पूजा करते रहे। कुछ दिन उन्होंने लखनऊ में की, उसके बाद लास्ट के 4 दिनों वो अपने गोरखपुर में मठ में गए और सारी सरकार उनके मठ से चल रही थी। तो कुल मिला के चूंकि कोई अचीवमेंट नहीं है तो इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो बार बार हिंदुत्व के एजेंडे पे जाते हैं। कहने को ये है कि एक पर्यटन के मानचित्र पे अयोध्या को लाने की तैयारी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लोगों को बता रहे हैं सब आप अयोध्या में बिजी रहिए, आप राम में बिजी रहिए। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की लगातार मृत्यु होती रही। जब राष्ट्रीय स्तर पे ये मामला आ गया उसके बाद भी सैकड़ों बच्चों की मृत्यु उसके बाद भी हुई है। गोरखपुर से वो सांसद रहे हैं, जब इतनी अव्यवस्था उनके अपने चुनाव क्षेत्र में है तो समझ सकते हैं कि प्रदेश के स्तर पे क्या चल रहा होगा।
मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलना और अब फैजाबाद के नाम बदलने की भी कोशिश हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। योगी सरकार की ओर से इन मुद्दों को आगे किए जाने को आप किस नजरिए से देखते हैं?
कुल मिला के हिंदुत्व के एजेंडे को ही प्रहार लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार भी चाहती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा, कभी केरल में तो कभी गुजरात में।
केरल में जब वो गए थे तो उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली ऐसा कहा जा रहा है। गुजरात में भेजा गया तो ऐसी खबरें थी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें देखा गया कि खाली सड़कों को वो हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखा जाए कि उनको कितनी सफलता मिल रही है?
योगी को ले गए तो गुजरात में भी और केरल में भी कोई बहुत पब्लिक से रेस्पॉन्स उनको नहीं मिला, लेकिन नेशनल नैरेटिव वो चेंज करने में सफल हो रहे हैं। जहां तक आपकी बात है छात्र संघ के चुनाव की, तो ये बात सही है कि राजस्थान में भी, हैदराबाद में भी, दूसरी जगहों पे भी, जहाँ जहाँ JNU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में, सभी जगह जहाँ भी छात्र संघों के चुनाव हुए हैं वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत सफलता नहीं मिली। इसका एक बड़ा कारण ये है छात्रों का मोहभंग हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने के, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के, वो कहीं कहीं पूरे होते नहीं दिख रहे हैं।
तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस दौर में मोदी के बाद दूसरा चेहरा संघ या भाजपा उनको बनाने की कोशिश में कर रही है तभी भेज रही है?
वो सिर्फ एक ही है कि इनके पास हिंदुत्व का कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जो दूसरे चेहरे हैं वो योगी से भी कहीं कहना चाहिए जिनकी विश्वसनीयता नहीं है और जिनकी छवि उनसे भी बेहतर नहीं है। जैसे अगर आप उमा भारती की बात करें, साक्षी महाराज की बात करें, ऐसे लोग जिनको अपनी जबान पे काबू नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों को लेके जाएंगे तो और छवि खराब होगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
एक शायर हैं अनवर जलालपुरी, जिन्होंने उर्दू में गीता लिखी। रायबरेली के लालगंज में रहते हैं फैयाज परवाना, जिन्होंने अवधी में राम की भक्ति में छंद लिखे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं एक रिपोर्ट राजस्थान के बीकानेर से, जहां हर दीपावली के दिन उर्दू में रामायण का पाठ होता है। शेरो शायरी वाली इस रामायण को 1935 में मौलवी बादशाह हुसैन राणा लखनवी ने उर्दू जुबान में पेश किया था। अब महफिल अदब और पर्यटन लेखक संघ हर साल इसका वाचन करते हैं। नारायण बारेठ की ये रिपोर्ट सुनिए।
थोड़े दिन में जंग के भी साजो सामा हो गए, खून से रंगीन सब को हो बियाबा हो गए, ये भी कुछ जख्मी हुए कुछ वो भी बेजा हो गए, कत्ले रावण के सब आसार अब नुमाया हो गए, देखने को जाहिरा हनुमान जी की चल गई, देखने को जाहिरा हनुमान जी की चल गई, वरना सीता जी आए थी कि लंका जल गई, वरना सीता जी आए थी कि लंका जल गई।
जब उर्दू में रामायण का पाठ हुआ तो कोई हाथ दुआ के लिए उठा तो कोई सिर आस्था में झुका हुआ था। जबान उर्दू थी लेकिन इसके केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मौलवी के हाथों लिखी इस छोटी सी रामायण में पैगाम बहुत बड़ा था। इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक बीकानेर के डॉक्टर जियाउल हसन कादरी इस रामायण के बारे में बताते हैं।
इस रामायण को एक मौलवी लिखा है और 1935 में लिखा है। इस रामायण को 25 मिनट में पूरी पढ़ सकते हैं आप। राम का वनवास से लेकर जंगल में घूमना, जंगल की मुसीबतें उठाना, फिर लंका का रावण से युद्ध होना और लंका जीत के वापस अयोध्या आना, सिर्फ 25 मिनट में सारा वाक्य इसमें बयान कर दिया गया है साफ सुथरी जबान के अंदर। इसके शेरों की जो जबान है इतनी साफ सुथरी है, पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है उसको और अनपढ़ भी समझ सकता है। अभी तक जो रामायण में लिखी गई जैसे राम सीतामानस अवधि में है, सबको अवधि नहीं आती है, ये सबको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन इसकी जबान ऐसी है जो आम बोलचाल की जबान है, इसको आप शहरों में पढ़िए या कहीं गाँव में पढ़िए, सब समझ सकते हैं।
इस आयोजन से जुड़े साहित्यकार असद अली असद इस रामायण की महत्ता बयान करते हैं।
तो आज इसकी प्रासंगिकता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है उभर के सामने आती। आज जहाँ हर तरफ राम के नाम पर जो फिरकापरस्ती का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर बीकानेर में बैठकर किसी कोई रामायण लिखता है और बीकानेर में बैठकर कोई रामायण का वाचन करता है और वो रामायण जो किसी मौलवी ने लिखी है और उसको कोई मुसलमान पढ़ता है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। इसका जो है असर हमेशा से ही होता रहा है। जहाँ भी थोड़ी बहुत अगर कहीं खलिश नजर आती है तो इसको सुनने के बाद वो खलिश भी जाती रहेगी।
9 पृष्ठों की रामायण में राम का वनवास है तो रावण से युद्ध को भी चित्रित किया गया है। इसमें सीता को ऐसे किरदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें पवित्रता है और सच्चाई है।
सीता जी के जो हालत थी उसको देखिए राणा लखनवी साहब ने उर्दू रामायण किस तरह से बयान किया है, ऐसी तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलेगी इसी रामायण में आपको सीता जी की। वो कहते हैं कि रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली ओस से मुरझा गई, गोया जूही की कली थी ओस से मुरझा गई। इनको जूही की कली की तरह नाजुक और पाकिजा बताया है, जो गमों की ओस से मुरझा गई, ये उनके दुख दर्द को इस तरीके से बड़े शायराना अंदाज में इस रामायण में राणा लखनवी ने बयान किया है।
इस रामायण का पाठ होता है तो मजहब, जात, बिरादरी और जवान के फासले मिट जाते हैं, क्योंकि ना इसने कहा कि मेरा खुदा बड़ा है, ना उसने कहा मेरा ईश्वर तेरे खुदा से बड़ा है। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर, राजस्थान।
श्रोताओं, एक खबर आपको और बता दें। भारतीय मूल की एक 11 वर्षीय छात्रा ने पानी में लेड यानी सीसा प्रदूषण का पता करने का सस्ता तरीका विकसित करके अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। गीतांजलि राव हैं, उनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष है और वो उन 10 प्रतियोगियों में शामिल थीं जिन्हें अपने विचार विकसित करने के लिए शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ 3 महीने बिताने के लिए चुना गया था। गीतांजलि ने जो उपकरण बनाया है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स के जरिए पानी में लेड के होने का पता लगाता है और ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले ये जो जांच थी ये काफ़ी महंगी होती थी। पानी के नमूनों को लैब में भेजना पड़ता था, लेकिन भारतीय मूल की 11 साल की गीतांजलि ने जो उपकरण बनाया उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर पानी में लेड के होने का तुरंत पता लगाया जा सकता है। शुद्ध जल की ग्रीक देवी टेथीज के नाम पर इस उपकरण का नाम रखा गया है। एक और आपको विश्लेषण हम बता दें, गुजरात विधानसभा चुनावों के नज़दीक आने के साथ ही वहां से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और वहां 3 युवा नेताओं की बहुत बात हो रही है। वो हैं पिछले 2 सालों में जो उभर कर आए हैं, पाटीदार, OBC और दलित समुदायों को प्रभावित करने वाले 3 युवा जो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, दलित समाज के नेता जिग्नेश मेवाणी और OBC नेता अल्पेश ठाकुर। तो इसी तरह की तमाम खबरें और विश्लेषण आप bbchindi.com के पन्ने पर पढ़ सकते हैं। आज हम आपको फेसबुक पर अपना कार्यक्रम लाइव नहीं सुनवा पाए तकनीकी खामी की वजह से, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ स्पेन और कैटालोनिया के बीच मध्यस्थता नहीं करेगा। स्पेन ने कहा है कि जल्द ही कैटालोनिया की स्वायत्तता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने यूरोपीय संघ के नेताओं से ब्रेग्जिट के मुद्दे पर वार्ता का नया माहौल बनाने की अपील की है। ब्रसेल्स में बोलते हुए टेरेसा मे ने कहा है कि ब्रेग्जिट का समझौता ऐसा होना चाहिए जिसका वो अपने देश में भी बचाव कर सकें। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध से पता चला है कि साल 2015 में 90 लाख असमय मौतें प्रदूषण की वजह से हुई थी। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट ने दुनिया भर में प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के डेटा का अध्ययन किया था। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।